वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफी सख्ती से वहाँ पे निपटा है, लेकिन वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो करीब एक हफ्ते से ज्यादा रहा और ये प्रोटेस्ट जो है 28 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ और इसमें जो मेन इशू था वो करप्शन वगैरह इशू था। और खास करके ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसमें कहा जाता है कि जो है अंडे का जो अंडा इसलिए कि जाड़े में वहाँ पे या हर जगह लोग अंडा खाते हैं एक खाते हैं तो एक का प्राइस जो वहाँ पे काफी बढ़ गया और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, लिविंग स्टैंडर्ड काफी वहाँ पे लोगों का गिरा है और इन्फ्लेशन महंगाई काफी ज्यादा है, करप्शन के भी इल्जाम वहाँ पे लगाए गए मतलब सरकारी एजेंसी। और पिछले साल ऐसा हुआ कि जो लोगों की सेविंग्स थी डिपॉजिट में खास करके वो डिपॉजिट क्रेडिट जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी तो वो उनकी लूज हो गई और जो वहाँ पे लोगों के जो पेंशन मिल रहे थे जो पेंशन रिसीवर थे तो वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो वहाँ पे अपनी जिंदगी को सही से बसर करें, वो फिर ड्राइविंग भी कर रहे थे तो इस तरह की परेशानियां थी वहाँ पे लोगों में और इस वजह से एक एंगर वहाँ पे लोगों में था।
जी डॉक्टर खान, ये बताइए कि क्या एक तो जैसे एक सतही तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक कारणों की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा, लेकिन ये भी शायद अटकल लगाई जा रही है कि एक जो वहाँ का सरकारी ढांचा है जो पूरा, उसके खिलाफ भी एक जो सतह के नीचे जो गुस्सा है वो है। तो क्या आपको लगता है कि विरोध प्रदर्शन जो हुए हैं इस बार, क्योंकि 2009 में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्या आपको लगता है कि इससे वाकई वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है?
देखिए, सत्ता परिवर्तन तो अभी जो सिचुएशन है उसमें तो नहीं लगता कि सत्ता परिवर्तन होगा, इसलिए कि वहां पे जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो काफी स्ट्रांग पोजिशन में है और वहां पे जो लोग थे वो भी मतलब उन्होंने काफी प्रो गवर्नमेंट मार्चेस निकाले और उनकी भीड़ काफी ज्यादा हुई, इसलिए कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब डरते हैं कि कहीं उनके खिलाफ एक्शन ना हो, इसलिए आप देखेंगे जो सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट थे वहाँ पर धीरे धीरे वो कम होते गए, फिर उनकी गिरफ्तारियां ज्यादा हुई तो वो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन तो काफी मुश्किल इसलिए रहता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग पोजिशन में है लोगों को कंट्रोल करने में, लेकिन जो वहाँ पे जो एंगर है वो एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है।
इस तरह की भी टिप्पणियां हो रही हैं कि एक जो वहां पे सामाजिक स्तर पर जो कट्टरपंथ है उसके खिलाफ भी जो ये जनरेशन है उसके लिए भी इस जो विरोध प्रदर्शन हुए उसका भी उसमें एलिमेंट था, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं?
नहीं, बिल्कुल आप जो कह रही हैं सही है, वहां पे जो जो ढांचा है खास करके एक तो वहां पे आप देखें कि जो वो काफी हार्डलाइनर्स हैं या जिनको कहा जाए बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, नो डाउट अबाउट इसमें है, लेकिन जो उसके समर्थन में भी लोग हैं और उसमें वैसे भी लोग हैं जो शिया बिरादरी में ही उसके अगेंस्ट में लोग हैं, उनमें भी काफी फैक्शन है, तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो वहाँ पे जो इसको कहा जाए थियोक्रेसी जो है उससे के वजह से वहाँ पे जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डेवलप होना था, खास करके एथनिक जो ग्रुप्स हैं इनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, वो वहाँ पे नहीं है, तो नेचुरली ये तो फैक्टर है, इसलिए कि वहाँ पे अगर वो इस्लामिक गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं तो उनको ये भी देखना होगा कि जो उनके सेक्ट के लोग नहीं हैं, मतलब जो शिया नहीं हैं, जो सुन्नी हैं या जो किसी दूसरे धर्म को मानते हैं या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनके भी जो राइट्स हैं उनकी के जो क्लेम्स हैं लेजिटिमेट क्लेम्स हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे स्टेटमेंट्स आए हैं खास करके गवर्नमेंट के लोगों के भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि आप अपने कल्चर को अपने लाइफ स्टाइल को इम्पोज नहीं कर सकते और नया जनरेशन जो है वो आज़ाद है अपने जिंदगी को अपने हिसाब से बिताने के लिए, हमने दो जनरेशन को इम्पोज किया वो हो गया, अब ये लोग आज़ाद हैं अपने हिसाब से जीवित रखें, तो नेचुरली ये जो टिप्पणियाँ हैं नेचुरली वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखें कि लिबरल डेमोक्रेटिक सरकारें हैं तो ये तो अप्रोच आएगा, या तो ये इसी सिस्टम में इसको इवॉल्व कर सकते हैं और या नहीं तो फिर जो आपने देखा कि जो रजा शाह जो शाह थी ईरान के जिनको डिपोज किया गया था वो 1979 में, उनके जो बेटे हैं उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी चाहिए, तो एक मॉडल वो है और एक मॉडल इनके पास जो है इसमें अगर ये काफी चेंज करना चाहें, लेकिन अगर चेंज करेंगे तो फिर इनको दिक्कतें काफी आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ईरान के सामने एक काफी एक जबरदस्त इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर है और کمپلیکیشنز ہے جس کو خود ایرانین کو ہی ڈیل کرنا ہوگا.
جی ایک آخری سوال آپ سے ڈاکٹر خان کی, ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ سعودی عرب میں بھی جو وہاں کے کراؤن پرنس ہے انہوں نے بدلاؤ کی بات کہی ہے, اور اب یہ ایران کے اندر اس طرح کے پردرشن ہو رہے ہیں, تو اوور آل کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہوئی ہیں گھٹنائیں ایران میں اور اس کا جو بھی آگے چل کے جو اس کا پربھاؤ ہوگا, یہ مدھیہ پور جو پورا کھیتر ہے اس کے لیے یہ اچھا ہے یا برا ہے, آپ اسے کیسے آنکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ تو آپ کا سوال کافی, اس کا جواب لمبا ہوگا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف تھوڑی سی آزادی دینے سے, مطلب لائف اسٹائل میں آزادی دینے سے پرابلم سالو نہیں ہوتے, اس لیے کہ جو ریجن میں جو اسٹیکس ہیں وہاں پہ فورن پاورز کے, یا وہاں پہ ود ان کنٹری جو ڈومیننٹ یا مونوپولسٹ ہیں ان کے جو اسٹیکس ہیں, تو اگر ان کو بھی دیکھا جائے, پھر جو رائیولیز ہیں آپ کے انٹرا ریجنل جو رائیولیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا, پھر وہاں پہ جو الائنسز ہیں ان لوگوں کے جو سرکار چلاتے ہیں, لبرل بھی ہیں لیکن جو ودیشی طاقتیں ہیں ان کی, جو تو بہت ساری وہاں پہ سمیکرن ہیں, تو ان بنا سمیکرن کو دیکھتے ہوئے صرف یہ میں کہوں کہ جیسے سعودی میں ریفارم آ گیا یا یمن میں ریفارم آ جائے تو اس سے حالات سدھریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں سدھریں گے. تو مڈل ایسٹ میں انفارچونیٹلی کافی پلیئرس انوالو ہیں, ان کے بڑے اپنے مطلب پرائیویٹ انٹرسٹ ہیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, اور اس میں مڈل ایسٹ جھوج رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے یہ ایک ہی کافی ٹوکن ایکسرسائز ہوگا, اس سے مڈل ایسٹ میں شانتی تو نہیں آ سکتی لیکن یہ ہے کہ ایک مینج کیا جا سکتا ہے لوکل لیول پہ ان چیزوں کو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کریٹ کرنے کے ساتھ, اس لیے کہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر یا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کریٹ کر رہے ہیں تو ان کے بھی چین کو دیکھنا پڑے گا, تار کو دیکھنا پڑے گا.
ڈاکٹر خان ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.
آپ کا بھی شکریہ پلو جی.